हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा हैरानी से युग की तरफ देखने लगे। पहली बार युग ने खुद को धोखा देने वाले को माफ किया था। ना सिर्फ माफ किया था बल्कि वो उसका पक्ष भी ले रहा था। तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? क्या तुम उसे पहले से जानते हो? कृषा ने हैरानी से पूछा। युग ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। इससे पहले कि कृषा कोई और सवाल पूछती, युग बोला, सही वक्त आने पर तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। दूसरी बात, किसी को बताना मत कि तुम पर तारा ने अटैक किया था। सबको यही लगता है कि ये सब दक्ष मल्होत्रा का किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि इस शादी में सारा या बाकी कोई और लोग ट्रबल क्रिएट करें। ठीक है, पर मुझे फोर्स मत करना। जब मेरा दिल हाँ करेगा तभी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। उसे फिर से मेरा प्यार और विश्वास जीतना होगा, कृषा ने सख्त आवाज में कहा। युग ने भी पहली बार कृषा को इस तरह किसी को इस कदर नापसंद करते हुए देखा था। उसे कोई पसंद ना भी आता था फिर भी वो प्यार से पेश आती थी। युग ने उसकी बात पर हामी भरी और गाड़ी फिर से ड्राइव कर ली थी। इस बार वो बिना गाड़ी को घुमाए हुए सीधा राणा मेंशन की तरफ जा रहा था। राणा मेंशन आने से थोड़ा दूर पहले अचानक कृषा ने युग को गाड़ी रोकने को कहा। युग ने गाड़ी रोकी और बोला, लिसन, अगर तुम्हें बाहर निकलकर स्ट्रीट फूड खाना है तो मैं किसी भी हाल में अलाउ नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें कुछ दिनों तक बिल्कुल हल्का खाना खाना है और मैं तुम्हारी डाइट को स्पेशली देखने वाला हूँ। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं, मैंने तुम्हें ठीक से कुछ कहा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई हूँ कि तुम बिना बताए उस दक्ष मल्होत्रा के पास पहुँच गई थीं। अब 24 घंटे तुम मेरे और गार्ड्स की निगरानी में रहोगी। युग कृषा को डांट रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने युग के गाल पर हाथ रखकर कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गुस्से में निकल गया। मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी थी क्योंकि तुम तारा की माफिया प्रिंसेस होने की वजह से उसकी शादी ध्रुव से करवा रहे थे। मुझे हमारा टाइम याद आ गया था। मैंने अपने मकसद के लिए तुमसे शादी नहीं की थी। तुमसे प्यार करता था, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। दूसरी बात, शादी के बाद भी मैंने कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें टच नहीं किया, ना ही किसी चीज़ की ज़बरदस्ती की थी। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें माफिया की दुनिया में इन्वॉल्व नहीं किया। तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट किया, फिर भी तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मेरे लिए तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो? तुम जानती भी हो अगर तुम डायरेक्ट माफिया की दुनिया में इन्वॉल्व होती तो मेरा कितना फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ भूलकर तुम्हारी सेफ्टी को पहले रखा, युग ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा ठीक है ना, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। कोई सॉरी बोलता है तो उसे माफ़ किया जाता है, ना कि इस तरह और शिकायतें लगाई जाती हैं, कृषा ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तुम कितना भी सॉरी बोल दो फिर भी यही गलतियाँ दोहराने वाली हो। किस किस गलती के लिए माफ़ी मांगने वाली हो कृष? पहले मुझे बिना बताए निकल गई, फिर मुझे इतना सब कुछ सुना दिया। ठीक है, तुमसे बात ना करके मुझे खुद को टॉर्चर फील हो रहा था, तो अब मैं तुमसे बात करके तुम्हें टॉर्चर करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ जब तक तुम मुझसे ठीक तरीके से मना नहीं लेती, युग ने सिर हिलाकर कहा और गाड़ी को फिर से ड्राइव कर लिया था। मन ही मन उसकी नाराज़गी खत्म हो चुकी थी। वो कृषा से गुस्सा रह ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसे परेशान करने के लिए वो जानबूझकर नाराज़ होने का दिखावा कर रहा था। वहीं कृषा मासूम निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। कृषा तो जानती भी नहीं थी कि युग ना जाने कितने दिनों से उसका ये बच्चों की तरह मुंह बनाना और उसे इस तरह प्यार से देखना मिस कर रहा था। कुछ ही देर में वे राणा मेंशन पहुंच चुके थे, जहां राणा मेंशन को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। युग ने ये काम अलीज़ा को इसलिए दिया था क्योंकि वो जानता था कि अलीज़ा हर काम शिद्दत से करती थी। जिस तरह से राणा मेंशन को डेकोरेट किया गया था उसे देखकर युग काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। वहीं उस सजावट को देखकर कृषा का थोड़ा मुंह बन गया था, पर युग के कहने पर वो शांत थी। साथ ही अलीज़ा ने कृषा के वेलकम की भी तैयारी की थी। जब बाकी फैमिली मिलकर कृषा का वेलकम कर रही थी तब अलीज़ा युग के पास आई। क्या लगता है चाचू, काम कैसा है? अलीज़ा ने एक्साइटेड होकर पूछा, जबकि वो जानती थी कि युग जैसा शख्स कभी भी खुलकर सामने से किसी की तारीफ नहीं करता था। तुम्हें कुछ साल पहले पैदा होना था, कृष को कुछ इसी तरह का सेटअप पसंद है, तो सोच रहा हूँ कि तुम पहले पैदा होती तो उसकी पसंद के हिसाब से हमारी शादी की प्लानिंग कर सकती थी। माफिया छोड़कर इवेंट मैनेजमेंट का काम क्यों नहीं देख लेती? युग ने सिर हिलाकर कहा। उसका रिस्पॉन्स सुनकर अलीज़ा हंसते हुए बोली, आप ये भी कह सकते हैं प्रेपरेशन इतनी अच्छी है कि आप अपनी शादी पर भी ऐसे ही तैयारी चाहते थे। जब समझ गई हो तो फिर कहने की क्या ज़रूरत है, युग बोला और फिर वहां से कृषा के पास चला गया था। अलीज़ा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। उनके वेलकम के बाद युग सीधा कृषा को आराम करने के लिए अपने फ्लोर पर लेकर गया था और साथ ही उसे किसी भी तरह का सवाल पूछने से मना किया था। वैसे भी कल से राणा मेंशन में ध्रुव और तारा की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। अगली सुबह तारा लगभग 9 बजे के करीब नींद से जागी। कल रात देर से सोने की वजह से उसकी नींद देर से टूटी थी। उसने देखा कि उसके कमरे में 2 लड़कियां आई हुई थीं जिनके साथ में कुछ सामान था। अच्छा हुआ मैम आप उठ गई, हमें आपको तैयार करना है, प्लीज़ आप जल्दी से फ्रेश होकर नहा लीजिए, उनमें से एक ने कहा। लेकिन मुझे तो यहाँ से कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, फिर तुम मुझे तैयार क्यों कर रही हो? तारा ने हैरानी से पूछा। आप खुद ही समझ जाएंगी, हमें भी कुछ बताने से मना किया गया है, प्लीज़ कॉपरेट कीजिए, दूसरी लड़की ने जवाब दिया। तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि इसे एक और नए टॉर्चर के लिए तैयार किया जा रहा था। उसे ये सब ध्रुव का ही प्लान लग रहा था। तारा बिना कुछ कहे बाथरूम में चली गई और लगभग आधे घंटे बाद नहाकर बाहर आ गई थी। तारा को जब चेंज करने के लिए कपड़े दिए गए तो वो थोड़ा हैरान थी। उसे पिंक और येलो कलर का लहंगा दिया गया था।
तारा कुछ पूछती भी तो वे जवाब नहीं देने वाली थी। उन्होंने तारा को हल्दी की रस्म के लिए तैयार कर दिया था। येलो पिंक लहंगे के साथ कानों में लंबे झुमके पहने गए थे और बालों में मैसी चोटी बनाकर उन्हें फूलों से सजाया गया था। इसके अलावा तारा ने कुछ खास एक्सेसरी नहीं पहनी थी। पहली बार तारा इस तरह के कपड़े पहनकर तैयार हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। तैयार होने के बाद तारा ने खुद को आईने में देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसे इतना किस लिए तैयार किया गया था वो इस बात से अनजान थी। तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा गार्ड आया जिसने तारा की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे जबरदस्ती खींचते हुए कहीं ले जा रहा था।